गीत सौ अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
नमस्कार दोस्तों, एक गीत सौ अफसाने सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को संज्ञा का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक के लिए हमने चुना है साल 1951 की फिल्म शोखियां का गीत, आई बरखा बहार पड़े बूंदन फुहार। लता मंगेशकर, प्रमोदनी देसाई और साथियों की आवाजें, केदार शर्मा के बोल और जमाल सेन का संगीत। बड़ी बजट की फिल्म होते हुए भी केदार शर्मा ने संगीत का भार अनुभवहीन नए संगीतकार जमाल सेन को क्यों सौंपा? फिल्म के गीत संगीत से जुड़ी क्या क्या बातें उल्लेखनीय रही? प्रस्तुत गीत का फिल्म में कैसा अवस्थान है? ये गीत किस दृष्टि से ट्रेंड सेंटर रहा? कितना जानते हैं आप गायिका प्रमोदनी देसाई को? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसको प्रस्तुत कर रहे हैं अनुज श्रीवास्तव।
16वीं शताब्दी के भारत में पुर्तगाली समाज की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्मकार केदार शर्मा की फिल्म थी शोखियां, जो प्रदर्शित हुई थी सन 1951 में। प्रेमनाथ और सुरैया थे नायक नायिका, साथ में सुप्रिया चौधरी, जीवन, नाजिरा, अचला सचदेव व अन्य कलाकार। एम्बिशियस पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित इस फिल्म की मूल कहानी प्रमोद शर्मा की लिखी हुई थी, जिसके लिए पटकथा और संवाद केदार शर्मा ने लिखे और उन्होंने ही फिल्म का निर्देशन किया। फिल्म के गीत भी उन्होंने ही लिखे, सिवाय एक फारसी गीत के, जिसे उनके भाई हिम्मत राय शर्मा ने लिखा था, जो फिल्म के प्रोडक्शन इंचार्ज और कलर निर्देशक भी थे। फिल्म में संगीत था जमाल सेन का। अब आते हैं फिल्म के पार्श्व गायकों पर। फिल्म की नायिका सुरैया है, द ग्रेट सिंगिंग स्टार सुरैया, इसलिए उनकी आवाज तो कई गीतों में है ही। साथ ही तीन अन्य महिला कंठ भी इस फिल्म के गीतों में गूंजते हैं, जिनकी वजह से एल्बम में विविधता आ जाती है। ये तीन आवाजें हैं लता मंगेशकर, राजकुमारी और प्रमोदिनी देसाई की। फिल्म के किसी भी गीत में कोई पुरुष कंठ नहीं है, यानी कि नायक प्रेमनाथ ने किसी भी गीत में लिप सिंक नहीं किया है। हरमिंदर सिंह हमराज के हिंदी फिल्म गीत कोश में इस फिल्म के एक गीत में शंभू नामक गायक का उल्लेख जरूर है, लेकिन पर्दे पर इस गीत को सुनते हुए केवल सुरैया और कोरस की आवाजें ही सुनाई देती हैं। संभव है कि कोरस में शंभू नामक कोई गायक रहे हों। फिल्म की नामावली में पार्श्व गायकों के नाम नहीं दिए जाने की वजह से शंभू नामक गायक की पुष्टि नहीं हो पाई। फिल्मकार केदार शर्मा अपनी फिल्मों में नए प्रतिभाशाली कलाकारों को ब्रेक देने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने न केवल राज कपूर, मधुबाला, गीता बाली, भारत भूषण और माला सिन्हा जैसे सितारों को उनके शुरुआती दिनों में मौका दिया, बल्कि कई संगीतकारों को भी इंट्रोड्यूस किया। इनमें शामिल हैं स्नेहल भाटकर, रोशन और जमाल सेन। स्नेहल भाटकर और रोशन को दिए ब्रेक की दास्तान हम फिर किसी दिन आपको बताएंगे। आज हम बात करते हैं जमाल सेन की। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार शरद दत्त का एक लेख मिलेनियम पोस्ट नाम पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने केदार शर्मा से हुई उनकी मुलाकात के बारे में बताते हुए लिखा कि किस तरह केदार शर्मा ने फिल्म शोखियां के लिए संगीतकार जमाल सेन को चुना। केदार शर्मा एक जरूरी मीटिंग के लिए अपने दफ्तर से निकल ही रहे थे कि एक आदमी उनके सामने आ खड़ा हुआ। उस आदमी ने राजस्थानी पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी, सर पर राजस्थानी पगड़ी भी थी और जबरदस्त मूंछें भी थी। उन्होंने केदार शर्मा से कहा, शर्मा जी, मैं माफी चाहता हूं कि बगैर अपॉइंटमेंट के सीधा आपके पास आ गया। केदार शर्मा जल्दी में थे, उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि उनका आना कैसे हुआ। बिना समय गंवाए उस आदमी ने कहा कि उनका नाम जमाल सेन है, वो एक संगीतकार हैं और कई साज बजा सकते हैं। वो एक कथक नर्तक भी हैं और उन्होंने कई धुनें बनाई हैं जो वो केदार शर्मा को सुनाना चाहते हैं। क्योंकि केदार शर्मा को नए नए प्रतिभाओं की खोज रहती थी, उन्हें जमाल सेन के व्यक्तित्व और सीधेपन ने आकर्षित किया। उन्होंने जमाल सेन को बैठ जाने के लिए कहा और फोन करके अपनी मीटिंग रद्द कर दी। जमाल सेन एक के बाद एक अपनी कंपोजिशंस केदार शर्मा को सुनाते चले गए और केदार शर्मा उनके धुनों में बह गए। जमाल सेन की रचनाओं ने उन्हें इतना प्रभावित और आश्चर्यचकित किया कि उन्होंने मन ही मन एक निर्णय ले लिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने जमाल सेन से पूछा कि वो उनसे क्या चाहते हैं। जमाल सेन का तुरंत जवाब आया, शर्मा जी, आप प्रतिभाशाली लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, मुझे भी एक मौका दे दीजिए। केदार शर्मा यही सुनना चाहते थे। उन दिनों वे एक बड़े बजट की फिल्म सुरैया और प्रेमनाथ के साथ प्लान कर रहे थे, लेकिन बिना दूसरी बार सोचे उन्होंने इस बड़ी फिल्म के लिए अनभिज्ञ जमाल सेन को साइन कर लिया। जमाल सेन को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से उन्हें इतना बड़ा ब्रेक मिल गया। केदार शर्मा अगर अनुभवी जौहरी थे तो जमाल सेन भी एक हीरा था। फिल्म शोखिया में जमाल सेन ने जो संगीत दिया वो इसी बात का सबूत है। केदार शर्मा का भी यही कहना था कि हालांकि फिल्म खास नहीं चली, लेकिन अपने सदाबहार संगीत और अविस्मरणीय धुनों के लिए ये फिल्म यादगार बन गई। राजस्थान के चुरू जिले के एक संगीतमय परिवार में जन्मे जमाल सेन का मूल पारिवारिक उपनाम हुसैन हुआ करता था। कहा जाता है कि उनके पूर्वजों में से एक कैसर हुसैन थे, जो शहनशाह अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक संगीत सम्राट तानसेन के शिष्य थे। उनकी प्रतिभा और अद्भुत गायकी से प्रभावित होकर स्वयं तानसेन ने उन्हें सेन की उपाधि से नवाजा था और इस तरह से कैसर हुसैन बन गए केसर सेन, और तब से उनका परिवार हुसैन से सेन बन गया। जमाल सेन के पिता जीवन सेन भी दरबार गायक और एक प्रसिद्ध उस्ताद थे। जमाल सेन एक बहुमुखी और प्रतिभाशाली कलाकार थे। वो ऑल इंडिया रेडियो कलकत्ता के लिए गाते थे, जहां उन्होंने पहली बार वंदे मातरम गाया था। गायन के अलावा वे उत्कृष्ट तबला, ढोलक और पखावज वादक भी थे। वे फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, इसलिए बंबई जाकर मास्टर गुलाम हैदर और उस्ताद झंडे खां के सहायक बन गए। कहा जाता है कि गुलाम हैदर ने अपने गानों में जो ढोलक का इस्तेमाल शुरू किया था वो जमाल सेन की ही देन थी। फिल्म शोखियां से जमाल सेन एक स्वतंत्र संगीतकार बने। जमाल सेन के दो पुत्र हुए, शंभू सेन और मदन सेन। शंभू सेन भी संगीतकार बने और मदन सेन एक सहायक संगीतकार। शंभू सेन के बेटे समीर सेन ने अपने चाचा दिलीप सेन के साथ मिलकर दिलीप सेन समीर सेन की जोड़ी बनाई और 90 के दशक में संगीतकार के रूप में बहुत सारे हिट गीत रचे। समीर सेन के पुत्र सोहेल सेन 21वीं शती के संगीतकार बने और अच्छा खासा नाम कमाया। आइए अब बात करते हैं फिल्म शोखियां के गीतों की। सुरैया के नायिका होने के बावजूद फिल्म का सर्वाधिक लोकप्रिय गीत लता मंगेशकर का गाया राग यमन पर आधारित सपना बन साजन आए ही रहा। गीत के शुरुआती संगीत में पखावज जमाल सेन ने ही बजाया था। गजल शैली में सुरैया का गाया नींद रातों की छीन ली, इस गीत को भी श्रोताओं ने खूब पसंद किया। फिल्म के अन्य गीतों में दो दुर्लभ फीमेल डुएट्स भी हैं। एक है सुरैया लता मंगेशकर और साथियों का गाया दूर देश से आजा रे, जिसमें सुरैया की आवाज उन्हीं पर सजी और लता मंगेशकर की आवाज कई सह अभिनेत्रियों पर जो गीत में सुरैया की सखियों के रूप में नृत्य कर रही थीं। इस गीत में जमाल सेन ने शास्त्रीय और लोक संगीत का मिश्रण किया था। फिल्म का दूसरा फीमेल डुएट है लता मंगेशकर प्रमोदिनी देसाई और साथियों का गाया आई बरखा बहार पड़े बूंदन फुहार, जो राजस्थानी लोक संगीत की समृद्धि लिए हुए है, और यही गीत है हमारे आज के इस अंक का गीत। सावन की पहली बारिश की खुशियां लिए ये गीत किसी एक या दो मुख्य अभिनेत्रियों पर केंद्रित करने की बजाय केदार शर्मा ने बहुत सी अभिनेत्रियों को समान रूप से स्क्रीन स्पेस दिया। इसका कारण ये था कि ये गीत फिल्म के बिल्कुल शुरू में है, जब कहानी में किसी भी मुख्य चरित्र का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष पर गीत को फोकस नहीं किया जा सकता था। मंजू, नाजिरा, रजनी, ज्योति, बेला आदि सह अभिनेत्रियां इस गीत में देखी जा सकती हैं। इस तरह से लता मंगेशकर, प्रमोदिनी देसाई और साथियों की मिलीजुली आवाजें बहुत सारे कलाकारों के होंठों पर एक समान सजी हैं। ये गीत फिल्म के बिल्कुल शुरू में आता है। फिल्म की शुरुआत प्रेमनाथ द्वारा कहानी की भूमिका देने से होती है, जिसमें वो अपनी बुलंद आवाज में कहते हैं, ये खंडहरात उस जमाने की याद दिलाते हैं जब हिंदुस्तान में पुर्तगीज के झंडे लहराए और उनकी देखा देखी दूसरी फिरंगी कौमों ने हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा। ये तस्वीर किसी लैला मजनू की दास्तान नहीं, ना कि रोमियो जूलियट का अफसाना है, और न ही किसी रॉबिन हुड की कारगुजारियों का किस्सा, बल्कि ये तस्वीर है हिंदुस्तान के एक बहादुर सिपाही की, जो अपने वतन की आबरू की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। हिंदुस्तान का वो बहादुर सिपाही जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये था 16वीं सदी का वो दौर जब हिंदुस्तान के जुनून मगरत में पुर्तगीज अपनी किस्मत आजमा रहे थे, उस वक्त जबकि सर पर एक बला मंडरा रही थी। राजा रंगीले राव के महल में परियों का एक झुरमुट रहता था, और इस भूमिका के तुरंत बाद बादलों के गुजरने की आवाज के साथ आई बरखा बहार गीत शुरू होता है, और रंगीले राव के रंग महल में जिन परियों के झुरमुट का उल्लेख भूमिका में हुआ है, उस झुरमुट में शामिल कुछ परियों के नाम, यानी उन अभिनेत्रियों के नाम हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आई बरखा बहार गीत का मुखड़ा केदार शर्मा ने कुछ यूं लिखा था, आई बरखा बहार पड़े बूंदन फुहार, बैरी बिन बरखा सुहाए न सखी, ओ दैया उन बिन मोहे कुछ भाए न सखी। 1951 में बने इस गीत के बाद बरखा बहार आने के जुमले को लेकर कई और मिलते जुलते मुखड़े बने। 1959 की फिल्म बरखा का शीर्षक गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखा, बरखा बहार आई बूंदों के हार लाई, रिमझिम ने छेड़े तराने। 1961 की फिल्म परख में शैलेंद्र का लिखा, ओ सजना बरखा बहार आई रस की फुहार लाई। इस श्रेणी के लोकप्रियतम गीत में से ये गीत एक है। 1964 की फिल्म दूर का चांद में साहिर लुधियानवी ने लिखा, पड़े बरखा फुहार करे जियरा पुकार, दुख जाने ना हमार बैरन रुत बरसात की। 1969 की फिल्म चिराग में मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा, छाई बरखा बहार पड़े अंगना फुहार, सैया आके गले लग जा। ये गीत भी लोकप्रिय रहा। इस तरह से शब्दों के थोड़े हेर फेर के साथ केदार शर्मा का लिखा फिल्म शोखिया का आई बरखा बहार बार बार फिल्मी गीतों में आता रहा, यानी ये एक ट्रेंड सेटर बन गया। फिल्म शोखिया के आई बरखा बहार गीत की गायिका प्रमोदिनी देसाई एक बहुत ही कम चर्चित पार्श्व गायिका रही, इसलिए आज इस गीत के बहाने आइए उनके जीवन की एक झलक प्रस्तुत करते हैं। 40 के दशक में जब बंबई में बनने वाली फिल्मों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने लगी, तब और अधिक गायक गायिकाओं की जरूरत महसूस की गई। फिल्मी संगीतकार लगातार नई गायकों की तलाश में रहते थे। प्रभात फिल्म कंपनी भले ही कोल्हापुर से पूना में स्थानांतरित हो गई थी, लेकिन कोल्हापुर में उनके कई कनेक्शंस रह गए थे। 1941 में जब प्रभात की अगली फिल्म संत सखू का निर्माण शुरू हुआ, तब संगीतकार केशवराव भोले को नए गायकों की आवश्यकता आन पड़ी। उनके सहायक वसंत देसाई कोल्हापुर से ताल्लुक रखते थे, और इसलिए उन्हें नए गायकों को खोज लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नीलू गावनकर की लिखी पुस्तक द देसाई ट्रियो एंड द मूवी इंडस्ट्री इन इंडिया में गायिका प्रमोदिनी देसाई को खोज लाने का उल्लेख कुछ इस प्रकार मिलता है। वसंत देसाई के कोल्हापुर और कोंकण में बहुत सारे संबंध थे। उन्हें कोल्हापुर की दो देसाई बहनों के बारे में पता चला जो बहुत अच्छी गायिकाएं थीं, लेकिन वो उन्हें जानते नहीं थे। वे कोल्हापुर में नीलू गावनकर की पत्नी सुशीला बाई से मिले, जो उन दो पार्श्व गायिकाओं की माता शरदिनी देसाई की सहेली थी। इस तरह से वसंत देसाई शरदिनी देसाई के दो बेटियों विनोदिनी और प्रमोदिनी से मिले। उस समय विनोदिनी 15 वर्ष की थी। काफी अनुनय विनय के बाद उनकी माँ उनके फिल्म गायन के लिए राजी हो गई। संत सखू में गाने के बाद विनोदिनी देसाई के लिए गायन का मार्ग खुल गया था। वो मूलतः शास्त्रीय गायिका बनी, लेकिन 40 के दशक के कुछ फिल्मों में भी उन्होंने गीत गाए, जिनमें शामिल है ग्वालन, लाखों में एक, पूज्य गांधी जी, सती नर्मदा और भगवान श्री कृष्ण। उनकी छोटी बहन प्रमोदिनी ने उनका अनुसरण किया तथा उनके और वसंत देसाई के सहयोग से 1949 की खुश रहो और राज जैसी फिल्मों से उन्होंने अपना फिल्मी गायन शुरू किया। शोखियां के इस गीत के अलावा 50 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में सह अभिनेत्रियों के लिए गाने गाए। उनके गीतों से सजी उस दौर की कुछ फिल्में हैं दिलरुबा, सजा, नंद किशोर, कश्मीर, चार चांद, फरियादी, 1-2-3, गुनाह, नौलखा हार और पहली तारीख। इसके बाद प्रमोदिनी देसाई का विवाह हो गया और उन्होंने फिल्म जगत को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, इसके बाद प्रमोदिनी देसाई का विवाह हो गया और उन्होंने फिल्म जगत को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।
तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी गीत से संबंधित रोचक बातों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे।
एक गीत सौ अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।